समय सार परमागम का पुण्य पाप अधिकार रहा है। देशनाचार्य के अनुसार पुण्य अधिकार समाप्त हो गया। अब उसका बाकी का अंश है तो अपन को लगता है पुण्य पापाधिकार था तो पुण्य अधिकार समाप्त हो गया तो अब पापाधिकार शुरू होगा, क्यों ऐसे लगेगा? नहीं, पूरे अधिकार का नाम है पुण्य पापाधिकार। और पुण्य अधिकार की चर्चा समाप्त हो गई तो वे कहते पुण्य अधिकार समाप्त हो गया तो अब पापाधिकार रहा है। तो सामान्य बुद्धि ये कहती है कि अब पाप की चर्चा होनी चाहिए, लेकिन इसमें पाप की चर्चा नहीं है बल्कि धर्म की चर्चा है, शुद्धात्मा की चर्चा है, अनुभव की चर्चा है, समझ ज्ञान की चर्चा है। अब ये जो समयसार की विशेषताएं हैं इन पर हर एक का ध्यान आसानी से नहीं जाता। अब इसमें जो अपन ने कल पढ़ी थी गाथा कि मोत्तूर्ण निश्चयर्थम व्यवहारेण विदुषा पवठंती परमस्य मस्यदानम दुजदीणम कम खयो बिहो। इसके अपने दो अर्थ किए थे, है ना याद कर? मैंने पूछने को बोला था, पूछ लो। पहला अर्थ तो ये है कि विद्वान लोग निश्चय को छोड़कर व्यवहार में प्रवृत्ति करते हैं, किंतु मोक्ष की प्राप्ति तो निश्चय का आश्रय लेने वाले संतों के होती है। तो सीधा सच्चा ये अर्थ है, अमृतम ने भी यही अर्थ किया, पर जैसनाचार्य के गले ये बात नहीं उतरी। ये क्या कहा कि विद्वान तो व्यवहार में प्रवर्तते हैं, संसार में घूमते हैं, और मुनिराज संत लोग निश्चय का आश्रय लेकर के मोक्ष की प्राप्ति करते हैं और विद्वानों को मोक्ष नहीं होता है। फिर गाथा में से ऐसा ही लगता है ऊपर से देखने पर, और इसी वजह से बहुत मुनिराज इसको उस पर लगा करके क्या बोलते हैं, लेके चलते हैं ना नेरा लगाने वाले नेता लोग, क्या बोलते हैं उसे, डंडा पे एक लिखवा लेते हैं पुट्ठे पे, डंडा पे पुट्ठा लगा लेते हैं, बैनर लगा करके लेके घूमते हैं, क्या राहुल गांधी वापस जाओ ऐसा लगा के घूमते हैं ना, अथवा राहुल गांधी हम तुम्हारे साथ हैं तुम आगे बढ़ो, ऐसा इस गाथा को लेकर के डोलते हैं। क्या साफ लिखा के पंडितों को मोक्ष होने वाला नहीं, और मोक्ष तो मुनिराजों को ही होगा। एक बात मैं और आपको बताना चाहता हूं, मैं बहुत मुनिराजों से मिला हूं, शायद ही किसी प्रसिद्ध मुनिराज से मेरा समागम नहीं हुआ हो, और अधिकांश ये बात उन्होंने मुझे हमेशा याद दिलाई कि भैया मोक्ष तो मुनि होने के बाद ही होगा ना, मुनि क्या। मैं कहा महाराज बिल्कुल सच्ची बात है आपकी, मुझे भोपाल की एक घटना याद आ रही है, इस वक्त मैं उसको रोक नहीं सकता इसलिए मैं आपको सुना रहा हूं। महावीर जयंती का दिन था और मैं बहुत दूर था, आसाम में कलकत्ता के उधर था, और भोपाल से मेरे पास पत्र पहुंचा, फोन पहुंचा कि महावीर जयंती पे सारी समाज आपको चाहती है भोपाल में। तो मैंने कहा कि भैया महावीर जी हमें तो बहुत दूर हूं यहां, कैसे भी कहीं से भी जहां से भी प्लान मिले जैसा मिले आप आ जाओ, लेकिन महावीर जयंती के लिए हमने बहुत बड़ा कार्यक्रम रखा है और वो आपके जैसे विद्वान की हमें जरूरत है। तो मैंने कहा ये बताओ वहां कोई महाराज तो नहीं है, और यदि हैं तो उनसे ये पूछो कि मेरे आने में उन्हें ऑब्जेक्शन तो नहीं है, मतलब मैं जानता हूं मैं बन रहा है टीवी पर भी आएगा फिर भी बोल रहा हूं घबराना नहीं, उन्हें ऑब्जेक्शन नहीं हो तो मुझे आने में कोई दिक्कत नहीं है, वात्सल्य भाव रहना चाहिए। ये भोपाल वाले बैठे हुए हैं सनत जी, तो उन्होंने कहा नहीं हमको बिल्कुल भी ऑब्जेक्शन नहीं है और जरूर जरूर उनको बुलाओ। तो हम गए वहां पहुंचे। जब पहुंच गए तो उनका संदेश आया कि सभा में प्रवचन करने के पहले एक बार मुझसे जरूर मिल लेना। अभी बड़ी खड़बड़ी मच गई कि क्या है क्या है क्या है। समय तो बिल्कुल ऐसा ही था कि प्रवचन का हो गया था। अब प्रवचन में आए गद्दी पे बैठना था और उन्होंने कहा कि बस 5 मिनट पहले खबर आई। तो वे ऊपर अलग से कमरे में बैठे थे और उन्होंने कहा मेरे से मिलने के बाद सभा में जाए, मैं भी सभा में बाद में ही जाऊंगा। गए साहब उनके पास, तो समय ज्यादा था नहीं, जल्दी से उन्होंने सीधी पूछी कि आप ये मानते हैं कि नहीं मानते हैं कि मुनि धर्म ध्यान किए बिना किसी को मोक्ष नहीं होता। मैंने कहा हाँ बिल्कुल मानते, पक्की बात है, इसमें कोई संशय की बात नहीं है। इसमें आपको संशय क्यों हो रहा है? बोले आप सभा में कह सकते हैं इस बात को, क्यों नहीं कह सकते? लंके की चोर कह सकते हैं, तो आगम की बात है, शास्त्र की बात है। बस मुझे इतनी ही बात करनी थी। तो मैंने वहां पर प्रवचन शुरू किया, महाराज आ गए, वो बैठ गए, वो सुने। मैंने कहा भाई हमारे तो सत्यक विधान की पूजा की जयमाला में लिखा है कि भाव लिंग बिन कर्म खिपाई, द्रव्य लिंग बिन शिव पद पाई, यों अयोज कारज नहीं होई, तुम गुण कथन कठिन है सोई। कि जिस तरह भाव लिंग के बिना कर्मों का नाश नहीं होता, और द्रव्य लिंग के बिना मोक्ष नहीं होता। क्लियर लगा? द्रव्यलिंग के बिना मोक्ष नहीं होता, ये तो द्रव्यलिंग के बिना तो होता ही नहीं है, उसमें क्या है? बहुत गालियां पड़ी। अब मुफ्त में ही हमको ये मान के चल रहा था कि हम मुनि धर्म के बिना मोक्ष मानते हैं, और उसकी वजह से सारा मतलब बोली थी। और हमने जब ये बोला तो इतनी तालियां पड़ी सब जो मुनि भक्तों की, कि उनकी तबीयत भी ठीक हो गई होगी। हम रामदेव बाबा बताते ना, ऐसे ऐसा करो तो तबीयत ठीक हो जाती। बिल्कुल हम वही बात मान रहे, वे भी वही बात मान रहे, और जबरदस्ती का एक भ्रम खड़ा कर दिया है, हो गया। कहीं पर लेना नहीं देना नहीं, कोई बातचीत है ही नहीं, उसमें कोई मतभेद की मुद्दा ही नहीं है, ख्याल नहीं ना। और एकदम वातावरण चेंज हो गया। अब बोलो अभी ये है क्या नहीं कि अपने हाथ दिगंबर देश धारण किए बिना किसी को मोक्ष नहीं होता है? ये तो पक्की बात है कि नहीं? कभी ऐसा होता है, मतलब मेरा कुछ मतलब ही नहीं है। ऐसे ही जैसे आचार्य विद्वान लोगों को मोक्ष नहीं होता और साधुओं को मोक्ष होता है, इस गाथा को भी लोग दिखाते हैं। पंडित जी आप इस गाथा को मानते हैं? कई हमें बताते हैं ये गाथा, हाँ मानते हैं, लेकिन इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ साफ तो लिखा कि विद्वानों को मोक्ष नहीं होता और संतों को मोक्ष होता है। तो मैंने कहा कि महाराज ये बताओ, क्या संत लोग विद्वान नहीं होते हैं? क्या संत लोग विद्वान नहीं होते? अरे हमारे यहां तो समुद्रभद्र जैसे, अकलंग जैसे मुनिराज, उन जैसे विद्वान की टक्कर में कौन था जिनको एक दफे सुनकर याद हो जाता था? क्यों? कि ऐसा बंटवारा संतों का और विद्वानों का करना अच्छा नहीं है, क्योंकि विद्वान भी संत होते हैं और संत भी विद्वान होते हैं। और आत्मा को जाने बिना ना विद्वानों को मोक्ष होता है ना संतों को मोक्ष होता है। क्यों? और आत्मा के जानकार वो जो मार्ग है अपने ना, उस मार्ग पर विद्वान भी चले तो उन्हें मोक्ष होता है और संत चले तो उन्हें भी मोक्ष होता है। अब क्योंकि जो मार्ग है उन्हें, मतलब वो मार्ग तो वो ही है ना कि दीक्षा लेके नग्न दिगंबर दशा हो, उसी हिसाब से गुणस्थान बढ़ेंगे ना, तो विद्वान उसी मार्ग से ही तो जाएगा ना। वो ये नहीं जाएगा और नहीं जाएगा का भेद कहाँ है? ये दोनों जाएंगे ही जाएंगे के तो भेद हैं। मैं ये कहना चाहता हूं आप लोगों से कि जैसे नाचार्य के समय में भी ऐसे झंडा लेकर वो बैनर लेकर चलने वाले लोग होंगे और इस गाथा को लेकर के ऐसा चलते होंगे, और इसलिए उनको इसका अर्थ दूसरा भी लिखना पड़ा, भैया ऐसा भी अर्थ होता है। अब दूसरा अर्थ कौन सा है बोलो, बताओ यार, अब कल सुना था, बोलो बताओ, कौन बताएगा, हाथ उठाओ। अरे भाई तुम क्यों यार, तुम क्यों उठाता यार, तुम हमारा विद्यार्थी नहीं है इसलिए हम तेरे को नहीं मानेंगे। प्रकाश छाबड़ा तो बहुत बड़े विद्वान है, है? हम बड़े विद्वान से पूछ भी नहीं सकते, इन्हें तो सब आता है और कदाचित बड़े विद्वान को नहीं आया है। तो हम अभी दोनों ही धर्म विकट में पड़ जाते हैं, अथवा कोई जो हम अभिप्राय समझ रहे उसके अलावा दूसरा अर्थ हो और हम कहेंगे नहीं ऐसा ऐसा, तो झगड़ा खड़ा हो जाए। दूसरा अर्थ मैं इधर सुनाता हूं, कौन अपनी पद्धति है ना कि बार बार सुनाओ। वो कहते व्यवहारे ना, व्यवहार में विद्वान लोग व्यवहार में नहीं प्रवर्तते हैं, क्यों नहीं प्रवर्तते हैं, क्योंकि मोक्ष तो निश्चय के आश्रय से होता है। अब एक वो दो अर्थ कैसे हो गए, क्योंकि व्यवहारेण एक कल बताया था तृतीया का प्रयोग है, व्यवहार के द्वारा प्रवर्तते हैं, व्यवहार में प्रवर्तते हैं, और व्यवहारे न प्रवर्तते, व्यवहारे माने व्यवहार में नहीं प्रवर्तते, तो उसी का अर्थ हो गया व्यवहार में प्रवर्तते हैं और उसी का अर्थ हो गया व्यवहार में नहीं प्रवर्तते। ऐसे ही मैंने बताया था ग्यारहवीं गाथा में कि निश्चय नहीं भी दो प्रकार का, व्यवहार नहीं भी दो, निश्चय भी भूतार्थ और अभूतार्थ, व्यवहार नहीं भी भूतार्थ और अभूतार्थ। कि सबसे पहले मैंने समझ ली, कब जाने में अशोकनगर में रहता था और एक सन 59-60 की बात होगी, कितने साल हो गए, 51 साल हो गए ना, ये बिल्कुल सही घटना है कि वहां मैं गया हुआ था, एक साड़ोरा गांव है अशोकनगर के पास, वहां विमान निकलते हैं तो विमान निकलते हैं बुलाते हैं विद्वानों को, तो प्रवचन करने गया था। तो मैं मंदिर में बैठे बैठे और जयसेनाचार्य का मुझे ये मिल गया समय साथ, तो मेरे पास जयसेनाचार्य का नहीं था उस वक्त, तो मैंने उसे पढ़ना शुरू किया, तो पहली गाथा से ही पढ़ना शुरू किया और ग्यारहवीं गाथा तक पहुंचा तो उसमें ये मैंने पढ़ा, क्या लिखा, मेरे पैरों के नीचे जमीन खींच गई, क्या, क्योंकि उसके पहले लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री नहीं, एक जैन समाज में भी लाल बहादुर शास्त्री थे और जो गुरुदेव के कट्टर विरोधियों में से थे, तो वो भरी सभाओं में कहते रहते ये लोग सुनने वाले कहते हैं कि निश्चय नहीं भूतार्थ और व्यवहार नहीं अभूतार्थ, ये बात सच्ची नहीं है, निश्चय नहीं भी दो प्रकार का होता है भूतार्थ और अभूतार्थ, और व्यवहार नहीं भी दो प्रकार का होता है भूतार्थ और अभूतार्थ। हम उसका विरोध करते थे, कैसा कैसे हो सकता है, लेकिन जब आचार्य की गाथा में हमने खुद ही पढ़ा जी, तो उस दिन मेरे को एक भाव आया जो मैंने कई दफे आप लोगों को विद्यार्थियों को अपनों को पहले देश से लेकर अंतिम देश तक बताया है, क्या बताया सुनो, अभी फिर नोट कर लेना कि तुम सामने वाले को जितना बड़ा मूर्ख समझते हो वो उतना बड़ा मूर्ख नहीं है, मूर्ख होगा, क्या क्या अध्यात्म समझ रहे ना, क्या कि तुम सामने वाले को जितना बड़ा मूर्ख समझते हो वो उतना बड़ा मूर्ख नहीं है, ऐसा मान करके व्यवहार करना चाहिए, हरेक को फटाफट घोषित कर देना कि टोटली रॉन्ग टोटली रॉन्ग, ये प्रवृत्ति बहुत बुरी है, वो भी कोई आधार होगा उसके पास आगम का, और कहीं ऐसा ना हो जाए कि उसका विरोध करने में किसी आचार्य का विरोध हो जाए, तो जैसे आचार्य की बात है तो उसकी क्या अपेक्षा है, तो मैंने बहुत मंथन किया चिंतन किया और जब मैंने समयसार अनुशीलन लिखा तो बहुत विस्तार से उस विषय पर लिखा, ख्याल नहीं ना, यानी हम एकदम ऐसा सामने वाले को जीरो मान के नहीं चले, हो सकता है आपका स्वाध्याय ज्यादा हो सामने वाले का कम हो, लेकिन हर आदमी भी थोड़ा आगम के सहारे से ही विद्वान है वो बोलते हैं, नेताओं की छोड़ दो, जो लफ्फा जी के भाषण होते हैं वो छोड़ दो, लेकिन वो कोई ना कोई आगम प्रमाण उनके पास होता है। तो ऐसी परिस्थिति उनके पास रही होगी, क्योंकि व्यवहार नए भूतार्थ और अभूतार्थ है माने क्या, कि जिस अपेक्षा से वो कहा गया है उस प्रयोजन की पूर्णता वो भूतार्थ है, और उसके बाद ये जाओगे तो अभूतार्थ है। अब कैसे देखो, उदाहरण से समझाता हूं, जल्दी समझ में आएगा, सबकी समझ में आएगा। एक के माने 11, सही है, ये निश्चय कथन है क्या व्यवहार? एक के माने 11, तो ये तो हो ही नहीं सकता, सफेद झूठ है ना, सफेद झूठ है। फिर भी गणित में एक के माने 11 माना जाता है कि नहीं? हमें 21 में से 18 घटाने हो, क्या करना हो, 21 में से 18 घटाना हो तो हम कैसे घटाएंगे, कि 21 माने जो 21 में एक है तो एक माने 11, और 11 में से 8 गए 3 बचे, हासिल की आई एक, तो एक और एक हो गए 2, और 2 में से 2 गए तो 0 बचा, तो 3 उत्तर सही आ गया ना। अब एक के माने 11 ये सही है कि नहीं, और शास्त्र में है कि नहीं, और अपने जिनवाणी में गणित होगा तो उसमें है कि नहीं, लेकिन निश्चय तो आद्यो पांच सही होता है, त्रिकाली सही होता है, और ये तात्कालिक सही होता है। इसलिए मैंने देखा एक तात्कालिक सत्य और एक त्रैकालिक सत्य, हम एक झूठा और एक सच्चा कहने की बजाय इस भाषा का प्रयोग करें कि निश्चय तात्कालिक त्रैकालिक सत्य है और व्यवहार तात्कालिक सत्य है। अब ये प्रयोजन, क्योंकि हमको ये बाकी निकालनी है, तो यहां एक नहीं माने, एक के माने 11, तो वो हमारे वो बाकी नहीं निकल सकती है, क्यों, ठीक है ना। तो अब कहीं तो मान सकते हैं ना, गणित में तो मान सकते हैं ना बेटा, अब हमें बेटा 11 में से 18 घटाना है, अब एक के माने 11 मान सकते हैं कि नहीं, बोलो कौन सी क्लास में पढ़ते हैं, खड़े हो खड़े हो, कौन सी क्लास में पढ़ते हो, 11th में, मैंने महाविद्यालय में भर्ती होने आया हो, नया रंग रूठे, कोई चिंता नहीं। एक के माने हमें 11 में से 18 घटाना है, तो वहां एक के माने 11 हम मान सकते कि नहीं मान सकते, बोलो नहीं मान सकते, क्यों, ये तो अभी पढ़ा नहीं है तब इतनी समझता है, जब पढ़ लेगा तब तो इसको पंख लग जाएंगे, बैठ जाओ, ये हमारे पास पढ़ लेगा तो पंख लग जाएंगे, नहीं मान सकते। 21 में से 18 घटाना हो तो मान सकते हैं, समझे ना, 11 में से 18 घटाना हो तो नहीं मान सकते हैं, क्यों, कि एक हासिल की गुंजाइश हो तो मान सकते, तो पीछे 2 है तो हासिल की गुंजाइश है तो मान सकते हैं, और हासिल की गुंजाइश नहीं हो तो नहीं मान सकते। तो व्यवहार में ऐसा चाय जा नहीं ठोक सकते कि एक के माने 11, प्रतिकूल जगह ही एक के माने 11 है, और वो चूंकि एक प्रयोजन विशेष को सिद्ध करता है, क्या, हमारा गणित का काम हमारा हल हो गया, इसलिए वो सत्यार्थ है, और उसे सब जगह लगाओगे तो असत्यार्थ है। कहना एक के माने 11 होता है तो ठीक है, आपने 1,00,000 रुपया बोले थे ना प्रकाश जी, 11,00,000 देने पड़ेंगे, चलेगा, एक के माने 11 होता है ना, कि वो तो व्यवहार से होता है, निश्चय से नहीं होता, भैया पैसा लेना देना भी व्यवहार है, इसलिए 11 ही देना पड़ेंगे, निश्चय तो है भी, क्यों भाई दर्शन जी, ठीक है कि नहीं। तो आप समझ गए ना, कि ये मैंने कहा व्यवहार भूतार्थ भी है और अभूतार्थ भी है, ये अर्थ मैंने किया, और निश्चय ने भी भूतार्थ और अभूतार्थ, व्यवहार तो ऐसे हो गया, और निश्चय ने कैसे अभूतार्थ हो जाएगा, क्योंकि जो हमारा व्यवहारिक प्रयोजन है वो उस प्रयोजन की सिद्धि करने वाला नहीं है, इसलिए वो अभूतार्थ है, समझिए ना, जो हमें सिद्ध करना है प्रयोजन क्या भी क्या है क्या है क्या देख रहे अच्छी रबर लगाओ जिसे निकले नहीं ऐसी कितने लोगों का दिमाग डिस्टर्ब किया और नहीं लगती तो भी दो आवाज तो जा ही रही थी ना है? क्या हुआ व्यवहार अब ऐसे ही यहां है क्या था कि उनको लगा कि ऐसा अर्थ नहीं निकाले अब वो बुभारो भुगतों का जो मतलब है ना अब वो प्राकृत भाषा का एक नियम है उसमें वो एस नहीं लगता एस समझ गए कि नहीं यदि संस्कृत में लिखो हो तो व्यवहारो अभूयथो तो एक एस लगा देते हैं और प्राकृत में नहीं लगता तो प्राकृत में अभूयथो लिखना हो तो भी भूयथो लिखना पड़ता है और भूयथो लिखना हो तो भी भूयथो लिखना पड़ता है तो दोनों का अर्थ कैसे समझेंगे उसमें व्यवहारो भूयथो लिखा है ना अभूयथो नहीं लिखा अध्यात्म कौन मानेंगे ऐसा अर्थ करके इस गाथा का तो फर्क क्या है फिर दोनों में प्राकृत में कि व्यवहारो भूयथो व्यवहारो भूयथो नहीं आया समझ में जब हम व्यवहारो कह करके थोड़ा गैप दे दें तो उसको में से अभूयथो अर्थ निकलेगा और थोड़ा गैप नहीं दें तो भूयथो अर्थ निकलेगा अब गैप कितना बोल पंडित ह्रस्व दीर्घ और प्लुप्त तीन चीजें होती जानते हो ह्रस्व माने अब जैसे आ होता ना छोटा आ ह्रस्व बड़ा आ दीर्घ और फिर बड़े आ का भी बड़े बड़े से बड़े बड़े से बड़े आ उसका नाम प्लुप्त नहीं आया समझने तीसरा नहीं सुना होगा अब बताता हूं अभी हाल बताता हूं आ आ ये प्रलुप्त हो गया माने एक अक्षर के बराबर समय लो तो ह्रस्व और दो अक्षर के बराबर समय लो तो दीर्घ और तीन से अधिक अक्षर के बराबर समय लो तो प्रलुप्त हिंदी में होते हैं दो वचन एक एक वचन एक बहुवचन संस्कृत में होते हैं तीन वचन एक वचन द्विवचन और बहुवचन माने एक और बहु इन दो के बीच में एक दो वचन और होता है इसलिए तीन माने अनेक होता है हिंदी में दो माने अनेक नहीं होता संस्कृत में तो हमने जब एक आ के बराबर समय लिया तो ह्रस्व दो आ के बराबर लिया तो दीर्घ और तीन के बराबर लिया तो प्रलुप्त और चार के बराबर पांच के बराबर छह के बराबर जितना भी लिया वो सब संगीत में काम आता है ये प्रलुप्त कहलाता है अब वो अभूयथों की समस्या हल करनी है तो हमने बोला व्यवहारो और भूयथो तो अब एक का अर्थ लिया तो पूरा अभूयथो आ जाएगा और दो का लिया तो व्यवहारो ऐसा चला जाएगा अब आधा लिया हमने एक अक्षर से भी आधा समय छोड़ा तो संस्कृत में उसे एस का निशान लगा देते हैं और प्राकृत में वो एस का निशान लगता नहीं है अब आपको उस उच्चारण के भेद से निर्णय करना पड़ेगा कि ये अभूयथो अर्थ है कि अभूयथो क्योंकि उतनी बारीकी से लोग उसको ना प्रयोग कर पाते हैं ना समझ पाते हैं इसलिए वो कहते हैं कि यहां पर ऐसा नहीं लगता है और इसमें अभूयथो भी अर्थ हो सकता है और भूयथो भी अर्थ हो सकता है हमने तो अभूयथो अर्थ कर दिया और व्याकरण बताने की जरूरत नहीं समझी और जैसे नाचारी न्याय और व्याकरण न्याय और व्याकरण दोनों बताते जाते हैं उनकी ये शैली है इसलिए उन्होंने उसका प्रयोग करके लेकिन वो वास्तव में दोनों का एक का दो अर्थ नहीं है वो दो में फर्क है एक में व्यवहारों के बाद में कुछ जगह छोड़ी है और एक में जगह नहीं छोड़ी है देखो थोड़ी सी बात हो तो घबराना नहीं अच्छी बात है समझने के लिए ये कंप्यूटर बनाया जिन लोगों ने तो अभी ये अपने ऐसे ऐसे टाइप करते जाते हैं ना तो वो एक शब्द लिखते हैं फिर दूसरा शब्द लिखते हैं तो बीच में जगह छोड़ते हैं कि नहीं छोड़ते हैं तो कहीं ज्यादा छोड़ते हैं कहीं कम छोड़ते हैं तो उसने ऐसी ऑटोमेटिक व्यवस्था की कि वो उसके बाद उतनी जगह वो बीच में छोड़ेगा, यदि आपने जरा देर कर दी वो ज्यादा जगह छोड़ देगा, वो उतनी स्पेस ऑटोमेटिक छोड़ता है। यदि हमें कम ज्यादा करना पड़ती है तो अपने आप करना पड़ती है, तो उससे निर्णय होता है कि इसका क्या अर्थ होगा। इतनी बारीकी से कोई भाषा समझते ही नहीं है, ये गुजराती और मराठी तो छोटी बड़ी का भेद नहीं जानते, छोटा हु बड़ा हु का अर्थ नहीं जानते हैं। क्यों? तो ये कहां से समझेंगे जो मैं आपको बता रहा हूं? यानी हम बोलने में, जैसे मैंने बोला बोलने में, अब यहां रुक गया ना, तो वहां पर जो टाइप होगा ना उतनी जगह छोड़ देगा वो। यदि वो उतनी जगह छोड़ी है तो मैं बोलने में भी उतना समय लूंगा बीच में। तो हम यदि बोलते जाएं और तो कंप्यूटर टाइप करे हमारी आवाज सुन के, तो हम जैसे बोलेंगे उतना सही स्पेस छोड़ के लिखेगा। क्या ये वैज्ञानिकों ने पकड़ करके उस कंप्यूटर को भी पकड़ा दिया, ये बात पकड़ करके उस कंप्यूटर को भी उनने पकड़ा दिया। तो वो जैसे देखिए, अब आपने संगीत का कभी देखा हो तो वो जो लिखेंगे, लिखते दो तीन एस बना देंगे और फिर पूरी लाइन खाली छोड़ देंगे और दूसरी लाइन से लिखेंगे, उसका क्या अर्थ है मालूम आपको? उसका अर्थ है कि अब इस अंतिम शब्द को आप इतनी बार बोलते रहो कि जब तक वो लाइन का समय पूरा ना हो जाए। क्या? आज हमें परम पदार्थ पायो, आज हमें छोड़ देंगे बस, आज हम तो खत्म। अब क्या करो तुम? आज हमें परम पदार्थ पायो, आज हमें कह दो, जितनी जगह छोड़ी हो जितनी जगह खेलते जाओ, परम पदार्थ पायो। और उसी के हिसाब से वो तबला ठोकने वाला तबला ठोकेगा, सारंगी वाला सारंगी बजाएगा, हारमोनियम वाला हारमोनियम बजाएगा, तो तुम्हारे लक के हिसाब से तब वो चलेगी। सब में है वो। क्या ये है? उसमें बहुत बारीकी है सब चीज में, उसकी बारीकी तक हम नहीं जाएंगे। तो नहीं तो इस गाथा में क्योंकि जयसेनाचार्य ने जो अंतर किया वो क्यों किया? क्योंकि वो व्याकरण प्रधान और नए प्रधान शैली में टीका लिख रहे थे। अमृतचंद ने क्यों किया? नहीं किया क्यों? कि वो वैसी शैली में टीका नहीं लिख रहे थे। यदि ऐसी शैली में जैसे लिखते तो वे ऐसा करते जैसा अमृतचंद जैसा, और अमृतचंद यदि उस शैली में लिखते तो वे ऐसा लिखते। ऐसा नहीं कि दोनों जानते नहीं थे, दोनों ही जानते थे, लेकिन दोनों का अपना एक तरीका था। उनको ये लगा कि अमृतचंद की जो है बहुत अच्छी है सब बात, लेकिन लोग इसका अर्थ समझ नहीं पाएंगे कि कौन सा शब्द क्या है, तो अपन व्याकरण भी बताते जाओ। और उसने उसे बालबोधनी टीका कहा कि हम बच्चों को समझा रहे पढ़ा रहे इसलिए उसे बालबोधनी टीका है। अब इसमें तो मुद्दे की बात है कि व्यवहार विद्वान जन व्यवहार में प्रवर्तते हैं, लिखा ना, एक जगह व्यवहार में प्रवर्तते हैं और एक जगह व्यवहार में नहीं प्रवर्तते हैं। अब एकदम मामला पलट गया, फिर भी अर्थ कैसे नहीं पलटा? और इसके बाद क्योंकि लगा दी। अब देखो फिर मैं बोलता हूं दोनों वाक्य ध्यान से सुनना आराध्य, यहां नहीं ध्यान लगा सुनो। विद्वान जन व्यवहार के द्वारा प्रवृत्तते हैं, किंतु मुक्ति तो परमार्थ का आश्रय करने वाले संतों के होती है। एक बात हो गया। अब विद्वान जन व्यवहार में नहीं प्रवृत्तते हैं क्योंकि मुक्ति तो निश्चय परमार्थ के आश्रय करने वाले संतों की होती है। अब अर्थ में फर्क कहां आया? क्योंकि माने कारण दे रहे कि विद्वान जन क्यों नहीं प्रवृत्ते हैं व्यवहार में, इसलिए क्योंकि उसके आश्रय से मुक्त तो होता नहीं, मुक्त तो निश्चय के आश्रय से होता है, इसलिए विद्वान लोग नहीं प्रवृत्ते हैं। एक अर्थ है। दूसरा ये कि विद्वान जन प्रवृत्तते हैं लेकिन उससे तो मुक्त मुक्त होने वाला नहीं है, इसलिए मुक्त संतों को होता है। अब ऊपर जब पहला अर्थ किया उसमें विद्वान और संत का एक ही अर्थ है। अब आप तो दुनिया हम दो ही अर्थ समझते हैं, क्यों उसी के लिए ये कह रहे कि वो विद्वान माने उसी संत ने। अब वहां पर विद्वान माने चार अक्षर की जगह थी इसलिए विद्वान सा लिख दिया, या दो अक्षर की जगह थी इसलिए संत लिख दिया क्या। और इस गाथा में विद्वान और संत शब्द एक अर्थ बाकी है। ये बात कल बाकी रह गई थी, मैंने आपको बताई। अब इसकी एक दूसरे मरम की बात है इस गाथा में। एक द्रव्य स्वभाव इन्हें है ना, टीका में है ना, जो टीका पढ़ते हैं ये कौन सी गाथा थी, 56वीं है ना, 56वीं है। कुछ लोग मोक्ष के पारमार्थिक हेतु से भिन्न जो वृत्त तपादि शुभ कर्म हैं उन्हें मोक्ष का हेतु मानते हैं। यहां उन सभी का निषेध किया गया है क्योंकि वृतादि अन्य द्रव्य के स्वभाव वाले पुद्गल रूप हैं। इस कारण उनके स्वभाव से ज्ञान का भवन नहीं बनता। जो पारमार्थिक मोक्ष हेतु है वही एक द्रव्य स्वभाव वाला है, होने से उसके स्वभाव के द्वारा ज्ञान का भवन बनता है। बस इसमें एक शब्द का अर्थ समझना है और पूरी गाथा समझ में आ जाएगी। और वो क्या है, एक द्रव्य स्वभाव ही नहीं, तो एक द्रव्य स्वभाव और अन्य द्रव्य स्वभाव, इसका क्या अर्थ है। इसका अर्थ समझ में नहीं आएगा तो कुछ समझ में नहीं आएगा। तो एक द्रव्य स्वभाव का सीधा सच्चा अर्थ यह है कि जिस द्रव्य का जो परिणमन है उस द्रव्य के उस परिणमन के कारण उसी द्रव्य में खोजना, उसी द्रव्य में होना, उसका नाम है एक द्रव्य स्वभाव। वो कहते हैं जानने रूप काम है, तो जानने रूप काम किस द्रव्य में होगा, कि जीव में होगा, क्योंकि जीव का और जानने का एक द्रव्य स्वभाव है। अब उन्हें चूंकि जीव शब्द का प्रयोग नहीं करके वहां पर ज्ञान शब्द का प्रयोग किया, जीव के अर्थ में और ज्ञान शब्द का प्रयोग, माने द्रव्य के अर्थ में ज्ञान शब्द का प्रयोग, गुण के अर्थ में नहीं। तो कहते ज्ञान द्रव्य ज्ञान स्वभाव से परिणमित हुआ, तो ज्ञान स्वभाव का जो परिणमन है वो ज्ञान ही है। तो ये खोजना ये निश्चय है, एक द्रव्य स्वभाव को कारणकारी सो खोजना ये एक द्रव्य वो निश्चय है, और अन्य द्रव्य स्वभाव में खोजना ये व्यवहार है। तो अगर विद्वान लोग इसमें प्रवृत्ति नहीं है, मैंने विद्वान लोग अपने सुख दुख के कारण अपने में ही खोजते हैं। हम सुखी होंगे तो अपने से ही होंगे, पर से नहीं होंगे। पर चूंकि ये जो देहादि की क्रिया, उपवास आदि की क्रिया, उपदेश आदि की क्रिया है, ये पुद्गल द्रव्य का स्वभाव है, वही हमारा राग है, ये भी आत्मा का व्यवहार है और इसे अध्यात्म पुद्गल कहते हैं, इसलिए ये भी पुद्गल स्वभाव है। तो कहते व्यवहार तो पुद्गल स्वभाव को आत्मा का हित का कारण कहता है, और जीव जीव को कहता है, इसलिए जो जीव को जीव का मानेंगे वे संत परमार्थ वाले हैं, उन्हें मोक्ष हो जाएगा, जो नहीं मानेंगे उन्हें नहीं होगा। भाई तीसरी बात ख्याल में आया ना। अब जो मैंने बताया है आपको उसे मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं, आप निकालो पेज नंबर 355 क्या इस किताब में, समय सार अनुशीलन भाग 2 में तीसरा पैरा। जिस द्रव्य में जो कार्य होना है उस कार्य का कारण उसी द्रव्य में विद्यमान होना एक द्रव्य स्वभाव है। कितनी सरल भाषा में लिखा है। अब इसको आपकी सरलता ख्याल में आएगी, अब वहां माथा मारते रहो और समझ में नहीं आएगा तो समझ में आएगा ये क्या है, क्या एक द्रव्य स्वभाव, एक द्रव्य स्वभाव क्या, एक द्रव्य स्वभाव क्या। और उस कार्य का कारण भी उसी द्रव्य में विद्यमान होना एक द्रव्य स्वभाव है, और एक द्रव्य स्वभाव वाला कारण ही सच्चा कारण है। तो मोक्ष भी आत्मा का होना है, और आत्मा के ज्ञान श्रद्धान और चारित्र रूप गुण के परिणमन भी आत्मा का होना है, माने मोक्ष भी आत्मा का होना है, दर्शन ज्ञान चारित्र रूप परिणमन होना भी आत्मा का होना है, और आत्मा के सन्मुख होना भी आत्मा का होना है। इस कारण मुक्ति का कारण आत्मा और आत्म सन्मुख सम्य दर्शन ज्ञान चारित्र के परिणमन को कहना, उसका नाम एक द्रव्य स्वभाव वाला हेतु है। हो गया क्लियर। और शुभाशुभ भाव और शुभ क्रिया दोनों लेना। शुभाशुभ क्रिया पुद्गल स्वभावी है, अतः वे आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति रूप कर्म के लिए अन्य द्रव्य स्वभावी है। अतः वे शुभाशुभ भाव व शुभ क्रिया मोक्ष के हेतु नहीं हो सकते। अभी मैं आपसे बोलता हूं कि ये हमको निर्णय करने बैठे हैं राजेंद्र जी, अभी हमको यहां हमें ढंग नहीं दिए कि ऐसा हो जाएगा फिर ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएंगे तो ऐसा हो जाएगा, क्या क्लियर बात है कि शुभाशुभ भाव और शुभाशुभ क्रिया मोक्ष का कारण नहीं है, बहुत स्पष्ट है ना। अब फिर एक कमें रह गया, यही तो दिक्कत है, जब तक तुम्हारा एक खड़ा रहेगा तब तक मेरी ये गाथा चलती है। आप मेरा पॉइंट समझेंगे ना, तुम्हारे से मतलब नहीं है, कोई ना कोई का चलता रहेगा, हमारी दुकान चलती रहेगी। लेकिन है पर एक नियम बनाया हमने, एक द्रव्य स्वभाव होना चाहिए, माने जो जिसमें कार्य होना है उसी में कारण होना चाहिए, उसका कार्य का कारण वही है, इसलिए वो एक द्रव्य स्वभाव नहीं है। कौन परद्रव्य की मतलब शरीर की परद्रव्य मतलब शरीर की क्रिया और रागादिक भाव एक द्रव्य स्वभाव में नहीं आते हैं, वो अन्य द्रव्य स्वभाव में आते हैं। अब ये बात हो गई ना, इतनी बहुत कितनी स्पष्ट हो गई। अब इसी बात को तीन कलशों में कहा है, अब ये तीन कलश पढ़ो, अभी है समय तो है ना अपने पास, बोलो भी पढ़ो, कौन पढ़ेगा। वृत्तम ज्ञान स्वभावेन ज्ञानस्य भवनम सदा एक द्रव्य स्वभावत्वात् मोक्षेतुस्त दैव तत्। वृत्तम कर्म स्वभावेन ज्ञानस्य भवनम नहीं द्रव्यांतर स्वभावत्वात् मोक्षेतुर्न कर्म तत्। मोक्ष हेतु त्रोधानाद बंधत्वात् स्वयमेव च मोक्ष हेतु त्रोधायत्वात् तत्त्वात् तन्निसिद्धते। हिंदी तो पढ़ो,
निषिद्ध सतवार, सौ सौ बार निषिद्ध किया गया है कार्य का शुभ भाव और शुभ क्रिया का मोक्ष के महाराज है ना। कितना सरल है ये, देखो इतना मैंने आपको समझा दिया, उसके बाद ये पद भी कितना सरल है, कितना स्पष्ट होता जाता है कि ज्ञान भाव का प्रणमन और ज्ञान भाव रूप हो गए, ज्ञान भावमय हो, सीधी बात है। ज्ञान भाव का ज्ञान भाव माने भगवान आत्मा का प्रणमन, ज्ञान भाव माने सम्मान ज्ञान चात रूप हो, समय ज्ञान चात कैसे आ गया, ज्ञान रूप कौन है, मध्य ज्ञान शुद्ध ज्ञान रूप नहीं, वो पहले कह रहा है पिछली गाथाओं में कि वो सम्मान ज्ञान ज्ञान का ज्ञान रूप प्रणमन और सम्मान श्रद्धा का ज्ञान रूप प्रणमन, वो चारित्र का ज्ञान रूप प्रणमन कह रहा है, वो वहां से बात रखना। आओ भाई अब ज्ञान भाव का प्रणमन ज्ञान भाव में होए का क्या अर्थ है कि भगवान आत्मा का प्रणमन सम्मा दर्शन ज्ञान चारित्र रूप हो। जी अर्थ कम से निकाल दिया ज्ञान भाव का, ज्ञान भाव पहले ज्ञान भाव का अर्थ भगवान आत्मा है, तो ज्ञान भाव के प्रणमन रूप सम्बन्ध ज्ञान चारित्र है, और पहले ही क्या है तो तीनों ज्ञान ही है, कौन सम्मान सम्मय ज्ञान चारित्र, तीनों ज्ञान ही है, ज्ञान का ही प्रणमन है। क्या मतलब कि शुद्ध गुण की बजाय ज्ञान गुण की बजाय हम तो सब पढ़े हैं, दिव्य गुण बजाय तुम भी इधर रखो, वो हम जो कह रहे हैं ना कि आत्मा तुम्हें करना क्या है, धर्म करने के लिए तुम्हें करना क्या है, बोलो भाई इतनी नक्की करो, एकमात्र हमें एक काम करना है बस, सिर्फ एक काम करना है, उससे मोक्ष का कारण है। अब इतने काम जो धर्म के हैं सुबह से शाम तक पूजा पाठ वृत्ति संयम जो भी है सब निकाल करके, अब इनमें एक को चुनना हो तो क्या करें, बोलो बोलो सनत कुमार जी, ज्ञान भाव के प्रणमन करो, बस जानना काम आत्मा का काम है और कुछ आत्मा का है नहीं, अज्ञान भाव रूप प्रणमन करो, लेकिन मोक्ष हो जाएगा कि हो जाएगा, केवल मोक्ष तो तीन से होता है, समझ ज्ञान चारित्र से, तुमने ज्ञान और चारित्र श्रद्धा और चारित्र को छोड़ दिया कि नहीं छोड़ा है भाई साहब, सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए भी ज्ञान भाव में प्रणमन करना है, सम्यक ज्ञान प्राप्त करने के लिए भी ज्ञान भाव रूप प्रणमन करना है, सम्यक ताप प्राप्त करने के लिए भी ज्ञान भाव रूप प्रणमन करना है। तो करना तो एक ही है ना, करने में दो काम कहां है, करने में तो तीन है। देखो, मां के होता है बेटा, दादी के होता है पोता, नानी के होता है दोहता, तो तीन हुए ना। तो अस्पताल में कितने का बिल चुकाना पड़ेगा, समझ में आया कि नहीं आया? बहू के बेटा हुआ उसी को दादी के पोता होना कहते हैं, वो क्रिया दो नहीं है, उसी को नानी का दोहता हुआ होना कहते हैं। अब हम कहते हैं नहीं, तीन चाहिए तो तीन सीट बुक करो, दादी खुश होते होते बदलते बदलते जा रही थी, मैंने कहा जा रही दादी, अम्मा इतनी जोरदार कि मुझे पोता हुआ है, पोता हुआ है तो आप ऐसी क्यों चल रही हो, अस्पताल में भर्ती होना चाहिए था, मुझे क्या हुआ, क्यों अस्पताल में भर्ती हूं, कि पोता हुआ ना, कि तुम पंडित किसने बना दिया, पोता होने में अस्पताल में भर्ती नहीं होना, बेटा होने में अस्पताल में भर्ती होना पड़ता है। भाई कि हमें तीन तीन चीजें करना है, एक करना कहां है तीन चीजें, अपने तीन चीजें कहां करना है, वो तुम तो अपने को जानो और अपने को जानते रहो, ये जान के यही मैं हूं, बस खत्म, कोई सब हो जाएगा। फिर वे कहते हैं क्या हो जाएगा, वृत्त शील संयम समिति गुप्ति सब हो जाएंगे, एक को पालो सब हो जाएंगे, इसका नाम है एक साधे सब सधे और सब साधे सब जाए। एक भगवान आत्मा की साधना करो तो सारे धर्म सद जाएंगे, और सुबह से सारे धर्म साधो तो एक भी नहीं पलेगा। सुबह से उठ के नहाओ धो इस शरीर को, क्योंकि बिना नहाए धोए मंदिर जाना अच्छा नहीं है, पूजा करना अच्छा नहीं है, धोती दुपट्टा पहनो, पीली पहनो, ऐसा पहनो ऐसा पहनो, ये जितना करोगे तो वो उस वक्त भगवान आत्मा की साधना नहीं होगी तो कुछ नहीं होगा। ये एक ही माने, एक के माने एक, एक चीज का नहीं, एक माने आत्मा, एक माने आत्मा। हम मैंने एमए में अभ्रंश ली थी, अब जानते हैं एक भाषा लेनी पड़ती है ना, तो मैंने अभ्रंश ली थी हिंदी एमए में, अभ्रंश भाषा ली थी। तो अभ्रंश के एक बहुत बड़े विद्वान है अजैन विद्वान, जैन नहीं है वो, लेकिन अभ्रंश भाषा तो सब जैनियों की, जैनियों की भाषा है। तो उनने एक सूत्र लिखा था कि अध्यात्म का जहां भी कथन आवे और वहां यदि एक लिखा हो तो आंख मीच के उसका अर्थ आत्मा कर देना। उस अजैन विद्वान ने यह लिखा था, इसमें मेरे दिमाग में से निकल रहा उसका नाम, कोई छत्री था, सिंह सिंह था, विवाद ना 73वीं गाथा में, 38वीं गाथा में एक आता है ना सब जगह, अहम कोखली सिद्धो, वो एक माने भगवान आत्मा, आंख मीच के कर देना, देखना नहीं, क्योंकि एक मन एक है साधे, अब एक है साधे में आत्मा साधे। अब आप हम नहीं करेंगे तो क्या अर्थ करेंगे, कोई एक चीज की साधना कर लो तो सब अपने आप सज जाते हैं। पर हमको उदाहरण क्या दिया जाता था मानू आपको, वो बता दूं क्या, स्वकार्यम प्रसाद नृत्य तो भी दोषा भावार लोकवत, ये क्या चक्कर है, ये राजवार्त की पंक्ति है, कौन सी, स्वकार्यम प्रसाद नृत्य तो भी दोषा भावार लोकवत, कि तुम अपना काम में करो पूरा, स्वकार्यम प्रसाद है, अपना काम करके फिर नाचो भी तो भी कोई दोष नहीं है, अपराध नहीं है, क्योंकि लोकवत, कि लोक में जैसे कोई आदमी का काम है कि वो उसकी ये ड्यूटी है कि एक काम आज इतना काम निपटाना है, शाम तक जाकर के निपटाना है, फिर आप वो सारा काम निपटा दो, है ना, फिर तुम वहां बैठ के चाय पियो, चाय पीने चले जाओ, वहां बाहर चले जाओ, गप्पे लगाओ, कुछ नहीं कहेगा ऑफिसर, पर तुमने काम नहीं किया पूरा और फिर ऐसे ही बैठे रहे तो भी डांट पड़ेगी क्या? सो कार्यम प्रसाद दे, अपना काम पूरी कर दो और फिर तुम नाचो भी तो भी लोग बर्दाश्त करेंगे। क्यों बजसेन जी, आपने मुझे दिल्ली बुलाया कि पंडित जी को प्रवचन करने के लिए, और दो घंटे मैंने आपका प्रवचन बढ़िया से बढ़िया कर दिया, तुम्हारी सभा ने तालियां ठोक दी, होगा बजसेन जी आपने बड़ा अच्छा पंडित बुलाया। फिर मैं कहूं बजसेन जी वहां चलना है जरा घूमने के लिए, फना चलना है, हाँ साहब तैयार, हाँ साहब तैयार, वहां जाना है, हाँ साहब तैयार, मुझे इधर अस्पताल जाना है, हाँ साहब, वो डॉक्टर को दिखाना, हाँ साहब, क्यों? और मैं प्रवचन का टाइम आया, भैया आज तो मेरा ठीक नहीं है, गड़बड़ नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। फिर क्या बजसेन जी एक गिलास पानी लाना, तो बीजी आपको ठंडा पानी अच्छा नहीं, फिर उपदेश मिलेगा, या तो तुम उपदेश दो या फिर उपदेश सुनो। असल में अपना कार्य कर दो और फिर ये मेरी माँ ने मुझे सिखाया था और मैंने गांठ में बांध के रखा है, तो जब मैं कहीं जाता हूं तो वे अपनी ड्यूटी में हर हालत में पूरी करता हूं, समझे ना? क्यों मैं जानता हूं कि हमने ड्यूटी नहीं की तो फिर हमारे चाय पानी में भी संकट पड़ जाएगा, वे चाय जितने भगत हों, क्यों समझ लिया? आपको मानूंगे नहीं, मेरी मां ऐसी हालत थी 20 वर्ष तक कम से कम कि उनको यहां से उठा के वहां रख दो तो रख दो, फिर यहां से वहां तक नहीं जा सकती थी, और हम हमारे पिताजी और हम सब भाई बहन जब छोटी उम्र में ही थे, सब जब हम 8-10 वर्ष के थे तब से यह हालत हो गई थी। ये हमारा भाई है ना छोटा, ये मेरे से 11 वर्ष छोटा है, कहां है खड़ा हो जा, ये छोटे 11 वर्ष छोटा है, ये मेरा भाई भी है, ये मेरा बेटा भी है, ये मेरा विद्यार्थी भी है, ये सब कुछ है, क्या क्या है मैं नहीं जानता, आप समझे ना? तो ये जब ये पैदा हुआ था तब से हमारी माँ बीमार हो गई थी, इसकी कृपा से, तो हम ऐसा उठा उठा के रखते थे। लेकिन हमारी माँ ने एक काम जिंदगी में नहीं छोड़ा, रोटी बनाना, तुम उठा के वहां रख दो वो रोटी बना के तुम्हें खिलाई। हम लोग बहुत कहते थे कि हम बना लेंगे, सीख जाएंगे, तुम मत करो इस तकलीफ उठाओ, तो वो ये कहती थी बेटा जिस दिन तक मैं तुम्हें ये खाना बना के खिलाती हूं ना तब तुम और तुम्हारे पापा सब मेरे आगे पीछे चक्कर काटते रहते हैं और सब मेरी सेवा करते हैं, जिस दिन मैं बंद कर दूंगी उस दिन सोचने लग जाओगे ना मरे ना माता छोड़े मेरे मरने का इंतजार करने लग जाओगे, मैं ये काम नहीं छोड़ूंगा। क्या हर आदमी स्वकार्यम अकलंक की बात है, स्वकार्यम प्रसाद नित्य तो भी दोषा भावा लोग पर, अपना काम पूरा करो और फिर तुम कुछ भी कहो समाज सब करेगी तुम्हारी सेवा, और तुमने अपना काम बंद किया अब चाहे जितना कुछ भी करो कोई तुम्हारा सग्गा भी तुम्हारी तरफ देखने वाला नहीं है, तो हम तुम्हारे पास ही बैठे रहे दिन भर, तुम्हारे पास ही बैठे रहे, धंधे पे नहीं जाए, दुकान पे नहीं जाए, बच्चों को स्कूल छोड़ने नहीं जाए, चुपचाप बैठो, दे दी ना तुम्हें दो रोटी, चुपचाप बैठो, उपदेश सुनना शुरू हो जाएगा। क्या समय हो गया, लेकिन एक बात मैं कहे बिना नहीं मानूंगा, तो हमारे पादमी जी अंतिम समय में इस्तीफा, हर 6 महीना में इस्तीफा, फिर इस्तीफा देते थे मुझे कि मैं अब मैं जा रहा हूं, मुझसे काम नहीं होता, मुझसे काम, ये कौन कहता तुमसे काम करने का, चुपचाप बैठे रहो, चुपचाप बैठो शांति से अपने कमरे में और हम सब सेवा करेंगे, लेकिन इस्तीफा में इस्तीफा नहीं, सच्ची घटना है। फिर एकदम बहुत मेरे से नहीं, मेरे से कुछ नहीं होता, कौन कह रहा तुमसे करने की, हम कर रहे हैं ना। फिर बोले कि नहीं, मैंने कहा अच्छा सुना है तो इस्तीफा देना है, क्या हम देना, तो बांधो बिस्तर, बिस्तर बांधो, सामान बुलाओ, रिक्शा बुलाओ, सामान रखो उसमें, फिर इस्तीफा दो, वो जाओ। ऐसा कहा मैंने पादमी जी से, इसी संस्था में बोल रहा हूं, बोले क्या कह रहे। मैंने कहा तुम्हें पता नहीं इस दुनिया का, जिस दिन तक तुम मंत्री हो तब सब आगे पीछे चक्कर काटते हैं, फिर तुम्हें एक गिलास पानी मिलना है मुश्किल हो जाएगा, कोई सुनेगा नहीं तुम्हारी, फिर मेरे से शिकायत करोगे। मेरी तो मेरे का प्रतिज्ञा है कि जिस दिन इस्तीफा दूंगा पहले सामान गाड़ी में रख के पैक करके निकल के हैं, और फिर बैठ जाऊंगा और उस ड्राइवर से कहूंगा चला, तो फिर इस्तीफा पकड़ाऊंगा, नहीं तो वो ड्राइवर ही नहीं जाएगा मुझे स्टेशन तक। कहा मैंने ऐसा मत करना, ये दुनिया बहुत स्वार्थी है। सच बोलता हूं मैं आपको, आप सब सीख लेना इस बात को। मेरी मां की सीख है और मैंने उसे जीवन में बहुत गहराई से उतारी है, मेरे रोम रोम में वे बात बसी है। मैं जाऊंगा वो कितना ही झगड़ा हो जाए मेरा, लेकिन जिस आदमी का काम के लिए मैं गया हूं उस आदमी के काम को मैं नहीं बिगड़ने दूंगा, नहीं बिगड़ने दूंगा, नहीं बिगड़ने दूंगा। क्या करूंगा, करूंगा बाकी राजो कुछ करूंगा। सीखना सब विद्यार्थियों से कह रहा हूं, जो यहां पढ़ रहे बे, जो पढ़ के निकल गए बे, और जो भर्ती होने आए हैं बे, अपनी ड्यूटी पूरी करना। अकलंक का बात है, स्वकार्यम प्रसाद नृत्यो भी दोषा भावाद लोकवत, फिर नाचोगे बेटा तो भी चलेगा। तो यहां कह रहे आचार्य स्वकार्यम प्रसाद, अपने भगवान आत्मा का अनुभव करो, ज्ञान को ज्ञान में लगा दो, और फिर तुम व्रत करो तो ठीक, नहीं करो तो ठीक, दिन में 3 दफे खाओ तो भी, घबराना नहीं, सच्ची कह रहा हूं, ये कोई मक्खनबाजी की बात नहीं है, कुछ नहीं है, सारे काम तुम्हारे सिद्ध हैं, सारे धर्म हैं, और तुमने यदि ये नहीं किया तो सारे धर्म बेकार हैं, कोई कीमत नहीं है उनकी, इस गाथा का संदेश है।